नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। तमिलनाडु में एक ही चरण के और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों में बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कुलटी और सिलीगुड़ी में रैलियों को संबोधित किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दलों ने भी राज्य भर में प्रचार किया। इस बीच तमिलनाडु में मतदान की तैयारियां पूरी की जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मतदान से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अगले 24 घंटे में पूरी होने की संभावना है। इसमें ईवीएम से संबंधित सभी प्रक्रियाएं और मतदान केंद्र बनाए जाने और वहां से 100 फीट की दूरी पर निशान लगाने का काम शुरू हो चुका है। निगरानी दल सभी प्रमुख स्थानों पर है और नगद तथा अन्य चीजों के लेन देन पर नजर रखने के साथ ही लगातार गश्त भी कर रहे हैं। नियमों के उल्लंघन की जाँच के लिए दोपहिया, चार पहिया और भारी वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है। ऐसे में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना, साथ ही फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रॉल असेंबली एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो बारूदी सुरंगों को भेदने की भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। इस्लामाबाद में संभावित अमेरिका और ईरान वार्ता पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, जिसे ईरान के अड़ियल रवैये और व्हाइट हाउस से मिल रहे बदलते संकेतों ने और हवा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम आज समाप्त हो रहा है। ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि ईरान धमकियों के बीच वार्ता नहीं करना चाहता। इस बीच ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वार्ता में अमरीका के दिल का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर कल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आतंकवाद के अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने सशस्त्र विद्रोही समूहों को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ही राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। एक सरकारी समाचार पत्र के अनुसार ये आमंत्रण कैबिनेट की बैठक में घोषित 100 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। चीन की सानिया में आज से 30 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 6ठे एशियाई बीच गेम्स में 31 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इन गेम्स में 15 खेलों में पदक प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें कुल 62 स्वर्ण पदक दाव पर होंगे। निशानेबाजी में एशियाई खेलों के पदक विजेता शिव नरवाल ने आज ISSF जूनियर विश्व कप 2026 के पहले दिन पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में टूर्नामेंट के पहले दिन भारत ने 3 पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।